संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में श्री नामदेव जी के चरित्र का ये चतुर्थ भाग है। हरि सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। श्री भक्तमाल की जय। भगवान के सभी भक्तों की जय। भक्तमाल के सभी भक्तों की जय। जय श्री हरि। तो नामदेव जी के चरित्र में हम पहुंचे थे कि उन्होंने एक सुंदर रत्न जड़ित बेड को ये नदी में प्रवाहित कर दिया, करवा दिया। जब ये संदेश बादशाह को पता चला तो वो उसने नामदेव जी को वापस बुलवाया कि भाई वापस उनको बुलाया जाए, हमारा जो बेड है वो हमें चाहिए, उनको बोलो। नामदेव जी ने कहा कि भाई आप राजा को बुला लो यहीं इस बार, और वो अपना यहाँ से नदी में हमने प्रवाहित किया है, नदी में से वो आके देख लेगा कि कौन सा उनका बेड है। संदेश नामदेव जी ने भी भिजवा, हम नहीं जाएंगे इस बार राजा के पास, बादशाह के पास। तो बादशाह ने चमत्कार देखना चाहा, अच्छा कोई नदी पे चमत्कार करने वाला है क्या, चलो भाई देखते हैं। तो बादशाह आ गया स्वयं नदी पे, जहाँ इकट्ठा हो गए सब लोग वहाँ पे। उन्होंने कहा बताओ भाई कि भाई हमने तो नदी में फेंकवाया हुआ, नदी से हम निकाल के दिखा देते हैं तुम्हारा। बादशाह को लगा कि नदी में कोई बेड अब तक रहेगा वो तो कहीं गहराई में डूब गया होगा, और ये निकालेंगे कैसे उसे, इतना भारी बेड है अगर तो कैसे निकलेगा। इन्होंने कहा भगवान को अर्पण की हुई वस्तु कहीं नहीं जाती, वो भगवान के पास ही रहती है, वो भगवान के पास अनंत वस्तुएं हैं, तुम देखो अभी। तो ये बताते हैं कि नामदेव जी अंदर घुसे और अपने एक एक हाथ से वो निकालते गए। उन्होंने कहा ये है तुम्हारा, और एक से एक उन्होंने अद्भुत अद्भुत दिव्य बेड वहाँ निकाल के दिखा दिए। ये चमत्कार देख कर कि पहचान तेरा कौन सा है, पहचान तेरा ये है, तेरा ये है तेरा। एक एक हाथ से बाहर निकालते रहे और फेंकते रहे बेड। ये दृश्य देख करके बादशाह को सही में पता चल गया कि अब तेरी खैर नहीं है, तेरा राज्य वाज्य सब छिनेगा, क्योंकि ऊपर वाला तेरे से खफा हो गया, तूने संत को परेशान किया है भगवान के। वो यहाँ सही में लौटने लगा चरणों में, और वो उसने क्षमा मांगी कि मेरा अपराध क्षमा कर दो, ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी भूल हो गई है, बार बार मैंने परीक्षा की है। उसने बोला कि तेरा अपराध एक ही तरह से क्षमा हो सकता है, अब आज के बाद किसी साधु को परेशान मत करना और हमें दोबारा बुला मत लेना कहीं पे भी, बस निकल जाए यहाँ से, चला जाए अभी कभी, कुछ और मत पूछ लेना। तो भागा वो वहाँ से, निकल गया। इस पे एक दृष्टांत और है कि दिल्ली के ही बादशाह दारा शिको, एक उन्होंने देखा कि अपने पूर्वज अकबर को एक संत के चरणों में लेटे हुए, एक वहाँ पे चित्र बना हुआ था दरबार में, राज दरबार में उन्होंने देखा अपने यहाँ एक चित्र लगा हुआ था दरबार में, अकबर जो है एक संत के चरणों में लेटे हुए हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुला के पूछा भाई ये संत कौन है और ये ऐसे क्यों लेटे हुए हैं अकबर बादशाह इनके चरणों में। इन्होंने बताया कि ये हरिदास जी हैं, महान संत, रसिक संत भगवान के, इनके सामने भगवान नृत्य करते थे, इनके गाना सुनते थे। अच्छा, इन्हें लगा कि तो इनके वंश में कोई आगे जो भी होंगे तो उनसे हम मिल सकते हैं। बोला हाँ जी होंगे वृंदावन में, हम पता करते हैं। तो वृंदावन में गए, पता किया मोहिनी शरण जी थे कि जी मोहिनी शरण जी हैं। तो इन्होंने कहा भाई हमें मोहिनी शरण जी के दर्शन करने जाना है, जब हमारे पूर्वज क्या करते थे तो ये भी वैसे ही चमत्कारी संत होंगे। तो बोले चलो ठीक है जी, इनका इंतज़ाम किया गया मिलने का। मोहिनी शरण जी से दाराशी को मिला और वैसे ही वो भी चरणों में प्रणाम किया और इनसे कहा जी कुछ सेवा बताओ हमें। इन्होंने कहा भाई दोबारा मत आना, बस यही सेवा है, बस चला जा, दोबारा आना मत। उसको बड़ा बुरा लगा कि मैं तो सेवा पूछ रहा हूँ और मुझे बोल रहे दोबारा मत आना। तो वो पलट के उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा मुझे कि दोबारा मत आना, मतलब मैं ऐसा क्या इतना। उन्होंने फिर उस पर एक दृष्टांत उन्होंने सुना मोहिनी शरण जी ने दाराशिको को कि भाई जंगल में एक संत तपस्या कर रहा था, एक बार तपस्या करते हुए कोई राजा वहाँ पे शिकार खेलते हुए वहाँ पहुँचा और वो अपनी झोंपड़ी में तपस्या कर रहा था। उसने देखा होगा कि ऋषि के पास कोई जल मिल जाए, प्यास से बेचैन था राजा। आया ऋषि तो जो अपनी उसमें तपस्या में लीन था, समाधि में था, तो उसे पता नहीं चला राजा आया है। उसने आसपास देखा कुछ खाने पीने का जल वल कुछ वस्तु है क्या, तो देखा कमंडल में जल रखा है साधु के, तो उसने कमंडल से जल पी लिया साधु का। साधु का जल पी लिया। तब तक उनके मंत्री जो जल की तलाश में गए हुए थे वो आए, उन्होंने देखा कि जी हाँ जल है, तो वो जो राजा के पात्र में जल लेके आए थे, राजा ने कहा इनके कमंडल से पी लिया, इसमें डाल दो, तो उन्होंने उस कमंडल में वो जल डाल दिया और वो चले गए। तो अब उन ऋषि का जल तो साधु पी गया और वो जो राज के कमंडल में जो राजा का जो बर्तन था उससे कम इसमें डाल दिया गया, चले गए। जब ये अपनी समाधि से उठे, इन्होंने जल पी लिया, वो जल पी लिया क्योंकि वो स्पर्श था राजसी बर्तन से, तो वो ये जल पी लिए। समाधि का जो इनका अभिमंत्रित जल था वो पी गया राजा। राजा वहाँ गया जाके, उसको तो सब वैराग हो गया है, उसे राजपाट अपना सुहाए ना, जंगल में जाके तो क्यों तपस्या की जाए, घोर वैराग्य हो गया और वो वापस आया साधु के पास। इधर साधु को वो जल पी करके उसको राजभोगने की इच्छा जागृत हो गई, क्यों ना राजभोगा जाए। तभी राजा वहाँ आया और उससे पूछने लगा, महाराज हमें तो आप गुरु दीक्षा दीजिए और हम तो यहीं रह के भजन करना चाहते हैं। ये बोले ठीक है, गुरु दीक्षा तो हम देते हैं, दक्षिणा में आप हमें राज्य दे दीजिए। बोले जी ठीक है। ये तो राजपाट में चले गए और ये लग गए इसमें। इन्होंने ही दृष्टांत दिया इनको कि देख भाई, तुम भी वैसे ही हो महान, अपने राजा हो तुम भी, लेकिन हम भी यहाँ सिद्धि में भगवान की भक्ति में महान ही हैं, तो हम दोनों ही ऐसे स्तर पे हैं कि या तो मेरा रंग तुम पे चढ़ सकता है या तुम्हारा रंग मुझ पे भी चढ़ सकता है। मेरा रंग चढ़ गया तो तुम राजपाट से जाओगे, कहीं तुम्हारा रंग मुझ पे लग गया तो मैं अपनी ये भक्ति वक्ति जितनी की ये सब बर्बाद हो जाएगी, तो इसलिए महाराज दोबारा मत आना आप। तो वो समझ गए कि हाँ भाई, साधुओं के सामने राजा को राजसी वेश में जाना नहीं है और बार बार राजाओं को संत महात्माओं से मिलना ठीक नहीं है, तो वो चले गए। इसी तरह से नामदेव जी ने कहा दोबारा हमें मिलना भी मत, आप देखना भी मत, चले गए। नामदेव जी खैर यहाँ से पूरी इनकी तीर्थ यात्रा कंप्लीट हुई और ये सीधे इस तीर्थ यात्रा में इनको किसी ने जूते भी मिले थे, इनको नए जूते मिले हुए थे, तो वो नए जूते ये लेकर के अपना सीधे इन्हें लगा कि विट्ठलनाथ से मिले बहुत दिन हो गए, तो सीधे विट्ठलनाथ जी के दर्शन करके तब हम घर जाएंगे। जब यात्रा पूरी हुई तो ये विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने गए। अब नए जूते थे तो इन्होंने लगा कि अरे बाहर अगर जूते छोड़ दिए, बहुत भीड़ है, कोई जूते उठा ले जाएगा, और दर्शन करने जाएंगे ध्यान जूतों में रहेगा कि हमारे जूते कोई उठा ना ले जाए, अपने विट्ठलनाथ से हम बढ़िया अच्छे तरह से मिल नहीं पाएंगे, तो क्यों ना इन जूतों को खोस लिया जाए। तो उन्होंने अपनी धोती में जूते खोस लिए, यहाँ पर ऊपर से अच्छे से धोती बांध ली और गए विट्ठलनाथ से मिलने, क्यों वो जूतों की चिंता खत्म हो गई। विट्ठलनाथ से मिले और ऐसा इन्होंने नृत्य किया, विट्ठलनाथ को देख करके भाव विभोर हो गए, भूल गए सब कि हमने जूते ठूसे हुए हैं यहाँ, और भाव विभोर हो गए, उनके सामने नाचने लगे। ऐसा भाव इनका जागृत हुआ भगवान, इतने दिन बाद भगवान से मिल रहे हैं, तो नाचे तो जूते निकल के गिर गए मंदिर में। मंदिर में जूते निकले तो वहाँ के जो पुजारी लोग थे उन्होंने देखा, और पुजारियों ने जब देखा तो इनको मारपीट शुरू हो गई, और ऐसी मारपीट हुई कि भाई इनको अब 5-7 लोगों ने पकड़ कर मारा और मंदिर के बाहर निकाल दिया, और नामदेव जी को कहा कि आज के बाद मंदिर में प्रवेश वर्जित है तुम्हारा, तुम जूते लेके मंदिर में आ रहे हो, भगाओ। तो ये बेचारे मंदिर के पिछली तरफ जाके बैठ के निराश पिट पिट आ गए, बहुत दुख हुआ इनको कि हाँ यार हमें मंदिर में ऐसे नहीं जाना चाहिए था, बहुत अपराध हो गया हमसे, अपराध हो गया तो, पर हम क्या करें। उसी समय कबीरदास जी आ गए, कबीरदास जी इनके पास आ गए, इनके बड़े मित्र थे कबीरदास जी, वो कहने लगे अरे ये भगवान है ही ऐसा, हम तो सारा दिन इसके गुणगान करते हैं, हम ही पिटवा देता है ये ऐसा ही है, इसके चक्कर में नहीं पड़ते, चलो छोड़ो इसे अपना देखेंगे हम, तो चलो निकलो यहाँ से, हम नहीं आएंगे दोबारा इसकी तरफ। तो दोनों ऐसे बातें करके कबीरदास जी ने इनका हाथ पकड़ा, हम नहीं करेंगे ऐसे, मतलब जैसे भगवान अगर भक्त के साथ अटखेलियाँ करते हैं तो भक्त भी करते ही हैं, वो भक्त भी हो गए हैं नाराज, आज पिटपटा दिया कि भाई इतनी अच्छी खासी मार पड़वा दी, इनके लिए जीवन जी रहे हैं हम, हमें मार पड़वा दी, क्या जरूरत थी मार पड़वाने की, और क्या जरूरत थी, तो शक्तिमान है, क्यों जूते गिरने दिए इन्हें हमारे, और क्यों दिखने दिए वो हैं, तो ऐसे करके दोनों कबीरदास जी ने और थोड़ा भड़का दिया इनको, इनके भी मन में आ गई है कि हाँ ये विट्ठलनाथ है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, ऐसे दोनों की चलो ठीक है हम भी नहीं विट्ठलनाथ के पास हम भी नहीं आएंगे दोबारा। जब चलने लगे तो वहाँ पे भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो भाई, दो इतने प्यारे भक्त भगवान के, कबीर जी भी और नामदेव जी भी, दोनों को भगवान कैसे छोड़ दें। उन्होंने कहा अरे आपके लिए तुम कुछ भी कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं आप जा सकते। बोले नहीं महाराज, आपने हमारी बेइज्जती कर दी, मंदिर में घुसना भारी हो गया अब हमारा, और आपके दर्शनों के बिना हम रह कैसे सकते हैं, आपको पता है दोबारा हम दर्शन नहीं कर सकते, ये बताओ। बोले नहीं रुको आप, यहाँ इधर खड़े हुआ। तो भगवान ने पकड़ के दरवाज़ा जो है इनकी तरफ ही घुमा दिया, पूरा मंदिर का मुख इनकी तरफ कर दिया भगवान ने, देखते देखते ही भगवान के देखते देखते मुख इनकी तरफ हो गया। ये चमत्कार सबने देखा, वहाँ पंडों ने भी देखा, वो जो पुजारी थे सबने देखा। और जब नामदेव जी की तरफ और कबीर जी की तरफ हो गया मुख, तो वो समझ गए। उन्होंने अपनी जो क्षमा मांगी कि हमने आपकी पिटाई की, भगवान तो आपसे इतने प्रसन्न है और हम भूल गए थे, हमें क्षमा करें, आप तो कैसे भी आ सकते हो, आपके लिए मंदिर में कोई रोक टोक नहीं है, जैसे मर्जी आओ, पर आप भगवान आपके हैं, आप भगवान के हो, कौन रोक सकता है आपको। तो फिर से भगवान के दर्शन किए और ये बड़े अच्छे से दोनों भगवान से मिल गए, चले संत। ये खबर देने के लिए ये पहुँचे नामदेव जी किनके पास, राका और बांका। यहाँ पे एक भक्त और हैं यहीं पे ही पंडरपुर में ही, राका और बांका जी। ये बहुत ही साधारण भक्त हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बता दें, बहुत ही साधारण हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, कुछ नहीं भगवान से याचना करते हैं, किसी भी चीज़ की कोई याचना नहीं करते हैं। तो ये इनके घर पे गए हैं बताने के लिए कि आज भगवान ने हमारे लिए मंदिर का द्वार घुमा दिया। ये वहाँ जाके जैसे ही देखते हैं, इनसे पहले, नामदेव जी से पहले ही भगवान इनके घर आ चुके हैं, पंडरीनाथ भगवान विट्ठलनाथ इनके घर आए हुए हैं, और घर वो लेटे हुए हैं भगवान चारपाई पे उल्टे, और उनकी सेवा कर रही है कौन, इनकी बेटी, राका और बांका की बेटी, उनको क्या कर रही है, वो मालिश कर रही है भगवान की कमर की। मालिश की उन्होंने और इन्होंने देखा तो भगवान अदृश्य हो गए। तो यहाँ आए राका बांका कहने ही आए थे, इन्होंने देखा भगवान के दर्शन हुए हैं, यहाँ क्या, बोला तू क्या करके आया वहाँ। नामदेव से वो थोड़ा ऐसे ही बात करते थे, क्योंकि राका बांका भी ऐसे ही बात करते थे और उनकी बेटी भी, तू क्या करके आया वहाँ, कि क्या, कि तूने भगवान की कमर में झटका दिलवा दिया, अभी उनके लिए हलवा बना के मैंने गरम गरम हलवा दिया उनको, तब जाके उनकी कमर ठीक हुई है, मालिश करी है, कितनी देर से यहाँ करा रहे हैं भगवान पड़े हुए। अच्छा, ये भगवान को कहीं झटका नहीं आता है, भगवान को कोई कुछ नहीं, ये लीलाएँ करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ, ना लीलाएँ करते रहते हैं भगवान, आनंदित करना है ना अपने भक्तों को, तो उनके सामने प्रकट होने का उनको भी बहाना चाहिए, लीला करने का भगवान को भी भक्तों के साथ खेलने का बहाना चाहिए ना, तो ऐसे भक्तों के साथ वो खेलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान की कमर लचक गई, ऐसे ऐसे कर किया तुमने। नामदेव जी को बढ़ाओ वो लगा, ओहो मेरे कारण भगवान ने इतना कष्ट सहा, तो ये वापस आए और बहुत निराश हुए कि हाय मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा, अब मैं भगवान से कोई भी याचना नहीं किया करूँगा। तो यहाँ ये हम चरित्र विराम करते हैं, इसके आगे का हम सुनेंगे थोड़ा सा राका बांका का, कि राका बांका के कष्ट मिटाने के लिए फिर से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान नामदेव जी के साथ मिल करके राका बांका का कष्ट मिटाने के लिए क्या करते हैं, और फिर एकादशी व्रत की निष्ठा की अगली हम चर्चा करते हैं, कि एकादशी में भगवान की निष्ठा, भगवान स्वयं कैसे परीक्षा लेते हैं नामदेव जी की, तो ये हम अगले चरित्र में करते हैं। राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।